നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അശ്വത്ഥാമനെ കൽ ഭഗവാൻ ശങ്കർ കി ശക്തി പ്രാപ്ത കർക്കെ ഉൻകോ ഖൂബ് അച്ഛാ പ്രസന്ന ഭി കർ ലിയ ഉൻസെ തൽവാർ ഭി ലേ ലി ശസ്ത്ര ലേ ലിയ ഓർ ഉസ്കെ ബാദ് ഉസ്നെ നരസംഹാര മചായ. അസൽ മേ ശക്തി തോ ഭഗവാൻ ശങ്കർ കി തീ. സബ് കുഛ് കർക്കെ വോ വാസി ചല ഗയ. ദ്രൗപദീ കെ പാഞ്ച് ബേട്ടോ കോ മാർ ദിയ. ദ്രൗപദീ നെ കഹാ കി അശ്വത്ഥാമാ കോ മാരോ തബ് മേ ഭോജന കരുംഗി അനുസരണ കരുംഗി. ഭീം ഗയ മാർനെ കെ ലിയേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ നെ കഹാ കി ദേഖോ അശ്വത്ഥാമാ മാമൂലി യോദ്ധാ നഹീ ഹൈ. ഭീം കോ മത് ഭേജോ ക്യോകി വോ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ചലായേഗാ വോ അനാഡി ഹൈ അശ്വത്ഥാമാ. ഇത്നെ ബഡേ യുദ്ധ കെ അന്ദർ കഭി അർജുൻ നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര നഹീ ചലായാ. കിസീ നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ചലായാ തോ ഉസ്കി ശാന്തി കെ ലിയേ ചലായാ. ഓർ വോ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ചലായേഗാ അശ്വത്ഥാമാ तो भीमसेन बचेगा नहीं. तो युधिष्ठिर जी से कहा कि आप भी चलो, अर्जुन भी चले और मैं भी चलूं. बड़ी सुंदर ये तीनों के तीनों की जोड़ी रथ में बैठ गई. वो असली रथ तो वो तो चला गया, पहले ही जल करके भस्म हो गया. ये दूसरा रथ था विश्वकर्मा का बनाया हुआ. ये रथ लिया और इस पर भगवान विराजमान हो गए. अर्जुन भी बैठ गए, युधिष्ठिर जी भी बैठ गए और दौड़ने लगे भीमसेन के पीछे पीछे. कृष्ण भगवान ने बड़े तेजी से घोड़ों को चाबुक से हांका. थोड़े बड़ी तेजी से चलने पर भीमसेन उनको चलते हुए दिखाई दिए. और तेजी से घोड़ों को दौड़ाया तो भीमसेन के पास पहुंच गए. भीमसेन इस समय बड़ा क्रोधातुर था, अश्वत्थामा का संहार करने पर तुला हुआ था. अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर तीनों भीमसेन को रोकते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ. वो रुके ही नहीं, भगे ही भगे क्रोध में. वो उनको देखते देखते गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा हुआ देखा. भीमसेन बड़ा क्रोध में आ गया, किंतु उसी स्थान के ऊपर गंगा जी के धार के पास ही व्यास जी को अनेक ऋषियों के साथ बैठा देखा. व्यास जी भी हैं और अश्वत्थामा भी है, और वो अश्वत्थामा इन ऋषियों के बीच में जाकर बैठ गया. बहुत डरा हुआ था, उसने अपने शरीर में घी लगा रखा था और वो कुशा के वस्त्र पहना हुआ था. कुंती नंदन भीमसेन देखते के, अरे कपटी, पापी, अत्याचारी, ऋषियों की मंडली में बैठकर तू बच जाएगा, खड़ा रहे, अभी तुझे इसमें से उठा करके मारता हूं. चिल्लाए, धनुष बाण लेकर दौड़े. द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये देख करके कि भीमसेन, उसके पीछे युधिष्ठिर, उसके साथ में अर्जुन, इनके रथ को चलाने वाले कृष्ण मेरी ओर आ रहे हैं, तो वो बहुत डर गया. अब उसके डर के कारण से उसका विवेक नष्ट हो गया और उसने देखा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है. मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इन सबको समाप्त कर दूं, इसी में ही मेरी भलाई है. ऐसा विचार कर उसने अपने दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक तिनका उखाड़ा और ऐसा संकल्प करके यह पृथ्वी पांडवों से रहित हो जाए, ऐसा क्रोध में संकल्प लेकर सब लोगों को मुंह में डालने के लिए वह प्रचंड ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। उसमें से आग पैदा हुई और वो प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोकों को भस्म कर डालेगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर उसके मन के भाव को ताड़ गए। उन्होंने जोर से कहा, अर्जुन सुनो, अर्जुन आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में भी तो है, अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष बाण लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े। उन्होंने पहले संकल्प किया, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का मंगल हो, मेरा, मेरे भाइयों का, सबका मंगल हो, ऐसा कहकर देवताओं को, गुरुजनों को नमस्कार किया और उसके बाद कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग शत्रु के द्वारा किए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए कर रहा हूं, किसी के नाश के लिए नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मास्त्र की शांति हो जाए, ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोगों के मंगल की कामना से अपना वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलय की अग्नि के समान बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा। उनमें आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगी, सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम देने लगा, आकाश में बड़ा शब्द हुआ, सर्वत्र आग ही आग की लपटें हो गईं, पर्वत वन वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार इन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे। यह देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहां देवर्षि नारद और महर्षि व्यास ने एक साथ दर्शन दिए। दोनों मुनि श्रेष्ठ देवताओं और मनुष्यों के पूजनीय हैं और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोगों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत करने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए। इधर वो अस्त्र बीच में दोनों खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए, उन्होंने भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया, फिर वीरों तुम दोनों ने ये महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया? उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्यास्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, मैंने तो इसी उद्देश्य से अस्त्र छोड़ा था कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हमको भस्म कर देगा, इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सबका हित हो वैसा करने की आप सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा दिया। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था, संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा ब्रह्मास्त्र को अर्जुन भी नहीं समेट सकता, इंद्र भी नहीं समेट सकता था। वह ब्रह्मास्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था, असंयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था किंतु वापस लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का सिर काट देता। अर्जुन ब्रह्मचारी था, व्रती था, उसने दुष्प्राप्य होने पर भी वह परमास्त्र प्राप्त किया था, परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी था, शूरवीर था, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने बड़े आराम से उस अस्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न तो किया, पर वैसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो जानता नहीं था। तब वे मन में बड़ा व्याकुल होकर व्यास जी से कहने लगा, मुने, मैंने ये अस्त्र भीमसेन के भय से छोड़ा, मैं भयंकर आपत्ति में फंस गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था, इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया, अब इसे लौटाने में मैं असमर्थ हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा, अतः आज ये सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, इसको वापिस समेटो, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। व्यास जी ने कहा, अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी था, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए नहीं छोड़ा, उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए प्रयोग किया और अब उसे लौटा भी लिया। ब्रह्मास्त्र को पाकर के भी तुम्हारे पिता का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर वीर साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों सहित मार डालने की कुबुद्धि पैदा हुई। धिक्कार, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है वहां 12 बरस तक वर्षा नहीं होती है। इसी से प्रजा का हित करने वाले अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है, तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो, अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, पांडवों को भी स्वस्थ रहने दीजिए। राजर्षि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते हैं, और हे अश्वत्थामन, तुम्हारे सिर पर जो मणि है वो तुम इन्हें दे दो, इसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे देंगे। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किया है, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक कीमती है, इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, भूख, प्यास, देवता, दानव, नाग, राक्षस और चोरों से होने वाला किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए, तो भी जब आपने मुझे आदेश दे दिया है तो वह तो मुझे करना ही होगा, किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो नहीं हो सकता, इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझ में सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूं, आपकी आज्ञा में कभी उल्लंघन नहीं करता, परंतु क्या करूं, इसे लौटाना तो मेरे बस की बात नहीं है। व्यास जी बोले, एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई, पांडवों को बचाया तो अब पांडवों का जो बीज है, वंश का अंतिम जीव है, उस पर तुम छोड़ रहे हो, क्या करें, ये भावना तुम्हारी अच्छी नहीं है, परंतु चलो, तुमने यदि इस शर्त के आधार पर ब्रह्मास्त्र का रास्ता बदल दिया है तो तुम ऐसा ही कर लो, आगे सब गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान जाने। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, तब अश्वत्थामा ने वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया और ये देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन पूर्व विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपप्लव्य नगर में थी तब एक तपस्वी ने कहा था कि कौरवों का नाश होने पर भी तेरे एक गर्भ का बालक बनेगा, एक तेरे गर्भ से एक बालक होगा, उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा और इससे बनने वाला बालक इन पांडवों के वंश को चलाने वाला होगा। छोड़ दो भले ही बाण, आगे उस ब्राह्मण के वचन सत्य होने वाले हैं। भगवान के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, हे केशव, तुम कौरवों और पांडवों के बीच में व्यर्थ ही पांडवों का पक्ष लेकर बात करते हो। जब कभी पांडवों की कहीं पर नाश की बात आती है तुम आगे आकर कोई युक्ति निकाल लेते हो, ये क्या है? ये तटस्थता नहीं है क्या? ये तटस्थता है? ये पक्षपात नहीं है क्या? मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा कृष्ण, मेरा ये भयानक अस्त्र अवश्य ही उस गर्भ को मार देगा। तुम चाहे कितना ही पांडवों का पक्ष लो, अब ये अस्त्र उसको नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा जी, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य ही अमोघ है, किंतु वह गर्भ में मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हां, तुम्हें अवश्य ही सभी समझदार लोग पापी और कायर समझते हैं, क्योंकि तुम बार बार पाप बटोरते हो, बालकों की हत्या करते हो। अभी तुमने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की, अब वो किसी पर वो मार दिए गए, तो अब ब्रह्मास्त्र से तुम उत्तरा के गर्भ की हत्या करते हो। इतने बालकों का पाप ढोकर तुम कहां जाओगे रे? मैं आज तुमको श्राप देता हूं, तुम 3000 बरस तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से हरदम मवाद निकलेगा और खून निकलेगा, उसकी दुर्गंध फैलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में रह नहीं सकोगे। जंगलों में पर्वतों में पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घायु प्राप्त करके इस संसार में बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करेगा और उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वो क्षात्र धर्म का अनुसरण करेगा और 60 बरस तक वो राज्य करेगा। लेकिन दुरात्मन, देखना, यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरुवंश की गद्दी पर भी बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल तो जाएगा, परंतु कोई न कोई उसको जिलाने वाला भी बैठा है, वो तुम्हारी ब्रह्मास्त्र की कोई परवाह नहीं करेगा। नराधम, उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र, तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया और ब्राह्मण होकर तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है, इसलिए देवकी नंदन कृष्ण ने जो बात कही वो अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर क्षात्र धर्म स्वीकार किया है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अश्वत्थामा बोला, हे व्यास जी, भगवान कृष्ण की बात सदा ही कृष्ण की तरह अजर अमर रहनी चाहिए। मैंने जो कुछ कृष्ण को कहा है उसके लिए मैं कृष्ण से क्षमा याचना करता हूं। क्रोध में मैंने बोल दिया, दुर्योधन के प्रति विशेष लगाव होने से और हरदम हम लोग दुर्योधन के पास यही चर्चा करते रहते थे कि कृष्ण इनका पक्ष लेता है, वो संस्कार मेरे अंदर बैठ गए, वो मेरे से फूट गए, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं और भगवान कृष्ण से भी क्षमा चाहता हूं। अब मैं मनुष्यों में केवल आप ही के साथ रहूंगा, आप ही से बोलूंगा, कोई बात होगी तो आपसे कहूंगा और किसी से नहीं कहूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा अपनी मणि निकालकर सबके सामने पांडवों को बड़ी नम्रता से अर्पित करके उदास मन से वन में चला गया। इधर अश्वत्थामा के चले जाने के बाद पांडव भी श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो इस समय अन्न त्याग किए हुए बैठी थी। वहां वे सब चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने आज्ञा दी और भीमसेन ने द्रौपदी को दिव्य मणि दी और कहा, भद्रे यह लो मणि, तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया। अब उठो, शोक का त्याग करो, क्षात्र धर्म का विचार करो, याद करो उस दिन को जिस दिन श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे। उस समय तुमने कृष्ण से कहा था कि केशव, आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं, इसी से मैं समझती हूं कि मेरे न तो पति है, न मेरा पुत्र है, न कोई मेरा भाई है, न तुम भी मेरे हो, कोई मेरा नहीं है। सो आज उसी बात को याद रखो, क्षत्रियों का ये धर्म होता है, जब वो युद्ध में जाता है उस समय वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते तड़पते दुशासन का खून पिया और उसका खून तुम्हारे सिंदूर की जगह लगाया। द्रोण पुत्र को हमने जीता, ब्राह्मण और गुरुपुत्र समझकर हमने उसको जीता हुआ छोड़ दिया, उसका सारा यश मिट्टी में मिल गया, हमने उसकी मणि छीन ली और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा दिए और वो कभी अस्त्र नहीं चलाएगा। यह सुनकर द्रौपदी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, गुरुपुत्र तो मेरे लिए गुरु के समान है, प्राणहीन तो मैं भी उसको नहीं करना चाहती थी, मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला लेना चाहती थी। अब ये मणि महाराज युधिष्ठिर को दीजिए और ये अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरुजी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण किया। उसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। हे महाराज जन्मेजय जी, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे उनके लिए शोकातुर होकर कृष्ण से कहा, कृष्ण अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्रों को कैसे मार डाला। आज तक अश्वत्थामा ने ऐसा पराक्रम पहले नहीं दिखाया, उसने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर, देवताओं के देवता, अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी, इसी से उसने अकेले अनेकों योद्धाओं को मार डाला। शिवजी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं जिससे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। वो भोलेनाथ, आशुतोष, अवढरदानी, जिनको मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूं, जिन्होंने अनेकों प्राचीन ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसमें सब लोग आश्चर्य में डूब गए, मैं जानता हूं वे संपूर्ण भूतों के आदि मध्य और अंत हैं। ये सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान पराक्रमशाली महादेव जी अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए और इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पांचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशायी कर दिया। महाराज आप ज्यादा विचार न करें, असल में ये सब मरने वाले थे, इसीलिए अश्वत्थामा तो एक निमित्त बना है, उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। यदि रात में अश्वत्थामा मारते नहीं तो दूसरे दिन युद्ध के अंदर मारे जाते। ये सारा पाप अश्वत्थामा के सिर पर मन गया। अश्वत्थामा ने ये काम महादेव जी की कृपा से किया है, अब आगे जो काम करना है आप उस पर विचार कीजिए। अब स्त्री पर्व चलता है।